Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
हरे कृष्णा, स्वागत है सबका इस समय साप्ताहिक श्री कृष्ण भावनामृत कार्यक्रम में। और आज का शुभ प्रभात आप सबको मंगल और शुभ हो। एक बार पुनः मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि मंदिर आने के याद है, मंदिर है 1229 कोर्सविल रिवर हेड हाईवे पर, जहाँ हर रविवार को विशेष पब्लिक प्रोग्राम होता है जो 11:30 बजे भजन कीर्तन के साथ संपन्न होकर के 12:30 बजे भगवान की आरती होती है। आरती के बाद 1 घंटे का प्रवचन होता है श्रीमद् भागवत गीता और भागवतम पर। इसके बाद गुरु पूजा होता है हमारे आचार्य परम पूज्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की, और 2:30 बजे महाप्रसाद के साथ कार्यक्रम समाप्त होता है। आइए सब मिलकर के हमारे साथ कृष्ण भावनामृत में भाग लीजिए। कल से पितर पक्ष शुरू हुआ तो उस विषय में मैं आप सब को आज कुछ सुनाना चाहता हूँ। पितर पक्ष की अमावस्या को सर्वपित यानी सभी पितरों का अमावस कहते हैं। स्थिति पर कुल के सर्व पितरों को उद्देशित कर श्राद्ध करते हैं। वर्ष भर में सदैव व पितृ पक्ष की अन्य तिथियों पर श्राद्ध करना संभव ना हो तब भी इस स्थिति पर सबके लिए श्राद्ध करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पितृ पक्ष की यह अंतिम तिथि है। अश्विनी के कृष्ण पक्ष को पितृ पक्ष कहते हैं। यह पक्ष पितरों के प्रिय को प्रिय है। पितृपक्ष की कलावधि में पितृ पृथ्वी के निकट आते हैं। इन अतृप्त आत्माओं को यानी पितरों को शांत करने के लिए इस काल में श्राद्ध विधि की जाती है। इस पक्ष में पितरों का महालय श्राद्ध करने से वर्ष भर तृप्त रहते हैं, यानी कि पितृपक्ष के अमावास को महालय अमावास कहते हैं, और उस दिन श्राद्ध करने से पितर हमारे साल भर तृप्त रहते हैं। उसी प्रकार शास्त्र में बताया गया कि श्राद्ध के अमावास को की तिथि को अधिक योग है, जबकि पितृपक्ष के अमावास सर्वाधिक योग तिथि है। पितृपक्ष की अमावस्या पितरों के नाम की धूप देने से मन शांति और घर में शांति की स्थापना होती है। रोग और शोक मिट जाते हैं। ग्रह कला और आस्मिक घटना दुर्घटना नहीं होती है। घर के भीतर व्याप्त सभी तरह की नकारक आत्मा ऊर्जा बाहर निकलकर घर के वास्तविक वास्तु दोष मिट जाता है। ग्रह नक्षत्रों से होने वाले छिटपुट बुरे असर भी धूप देने से दूर हो जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन की दी जाने वाली धूप से पितृ तृप्त होकर मुक्त हो जाते हैं, तथा पितृ दोष का समाधान होकर पितृपक्ष यज्ञ भी पूर्ण होता है। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार श्राद्ध करने के लिए एक पूरा पखवाड़ा ही निश्चित कर दिया गया है। सभी तिथियां इन 16 दिनों में आ जाती है। कोई भी पूर्वज जिस तिथि को इस लोक को त्याग कर परलोक गया हो उसी तिथि को इस पक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है, लेकिन स्त्रियों के लिए 9वीं तिथि विशेष मानी गई है, जिसे मार्त नवमी भी कहते हैं। वास्तव में पितरों का ऋण चुकाना एक जीवन में तो संभव ही नहीं है, अतः उनके उनके द्वारा संसार त्याग कर चले जाने के उपरांत भी श्राद्ध करने करते रहने से उनका ऋण चुकाने की परंपरा है। श्राद्ध से जो भी कुछ देने का हम संकल्प करते हैं वह सब कुछ उन पूर्वजों को वह अवश्य प्राप्त होता है। श्राद्ध पक्ष 16 दिन तक अश्विनी मास की पूर्णिमा से अमावस तक रहता है। जिस स्थिति में जिस पूर्वज का स्वर्गवास हुआ हो उसी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है। उनकी जिनकी परलोक गमन की तिथि ज्ञान ना हो उन सब का श्राद्ध अमावस को किया जाता है। वैसे तो सभी अमावस तर्पण के लिए श्रेष्ठ है, परंतु पितृ पक्ष के अमावस को पितृ तर्पण तथा श्राद्ध के लिए सर्वाधिक फलदायी मानी जाती है। इसे पितृ विसर्जन अमावस कहा जाता है। श्राद्ध के लिए गया जी को पवित्र तीर्थ बताया गया है। कहते हैं कि अमावस के दिन सभी पितर अपने वंशज के द्वार पर पिंड प्राप्ति की आशा से आते हैं। यदि उनके सम्मान पूर्वक पिंड दान तथा तर्पण मिलता है तो गृहस्थ वंशज को सुख समृद्धि के आशीर्वाद देते हैं। यदि उनमें कुछ नहीं उनको कुछ नहीं मिलता है और वे निराश होकर होते हैं तो वे श्राप देकर लौट जाते हैं। अतः अपने परिवार के कल्याण हेतु पितरों को श्राद्ध पूर्वक तर्पण करना अभीष्ट है। याद रहे ये श्राद्ध पूर्णिमा कल से शुरू हुआ है और 28 सितंबर को महालय अमावस श्राद्ध अमावस भी है। तो अपने जिसे मैंने बताया वो कीजिए, आपके घर में सुख शांति आएगी। अब मैं गरुड़ पुराण की कथा पुनः जारी करता हूँ, दूसरे अध्याय से। गरुड़ भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, यमलोक के मार्ग कितना दुखदायी होता है जिस पर चल करके पापी जन यमलोक पहुंचते हैं। श्री भगवान बोले, यम मार्ग मां दुख प्रदंतेक तया यम्यहम मम भक्तो अपि चच्युत्स्वा त्वं भविष्यासि कम कंपित। हे गरुड़, यमलोक का मार्ग अत्यंत दुखदायी है, मैं तुमको बताता हूँ। तुम मेरा भक्त है परंतु सुनकर कांप उठोगे। यह मार्ग ऐसा कठोर है जिसमें मनुष्य को विश्राम करने का स्थान नहीं है, किसी वृक्ष की छाया भी नहीं है और ना वहां प्राणों के पोषणार्थ कुछ अन्न ही है, ना खाने के लिए कुछ अन्न है खाना है। कहीं भी जल नहीं दिखाई देता जिससे प्यास बुझाई जा सके और वहाँ बारह सूर्य इस भाग में प्रलय काल के समान तपते हैं। वहाँ जाते समय अति शीत बहुत ठंड पर वायु हवा चल के द्वारा पाप आत्मा अत्यंत पीड़ित होता है। मार्ग में कांटे बिछे रहते हैं जिनमें पापी विधन विघ्न जाता है। कहीं महाविषधारी सर्प आकर उसको लपेट लेते हैं, फिर कहीं बड़े सिंह व्याघ्र और श्वान आकर के उसके मांस को मांस की बोटियां निकाल लेते हैं और कहीं बड़े बड़े भिक्षु काट जाते हैं। कहीं पर वन में भटकती हुई दवा अग्नि उसे जलाती है। आगे चल कर के कहीं महाघोर यवम अत्यंत बिहाड़ वन है, वहां 2000 योजन यानी कि 16000 माह लंबा चौड़ा है। वृक्षों के पत्ते तलवार की तरह पैने हैं। उस वन में बड़ी बड़ी चोंच वाले काक उल्लूक वट गिद्ध आदि भयानक पक्षी, दो दशों वाली मधुमक्खियां उड़ती हुई पाप आत्मा को काटती है। वह वन की अग्नि से जलता है और तलवार से पत्तों द्वारा प्रेत छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं कहीं अंधकूप में गिर पड़ता है तो पाशुक द्वारा यमदूत से निकाल लेते हैं, कहीं बहुत ऊंचे पर्वतों पर चढ़ करके फिर नीचे गिरता है, कहीं तीक्ष्ण शस्त्रों पर, कहीं शंकुओं पर चलना पड़ता है, कहीं अंध महाभयानक नरक में फिसल पड़ता है, कहीं पानी में गिर पड़ता है, कभी भारी कीचड़ में जा गिरता है, कहीं अति उबलते हुए कीचड़ में गिर जाता है, कहीं तपी हुई बालू में पड़ता है, तो कहीं तांबे के रूप में आग वाले नरक में गिरता है, कहीं कहीं अंगारों के ढेर पर तथा धुआंधार अग्नि में गिर पड़ता है, कहीं कहीं पर अंगार बरसते हैं तो कहीं ओले यानी कि हेल स्टॉर्म की भांति वज्रशिला पत्थर बड़े बड़े पत्थर बरसते हैं, कहीं खून बरसता है तो कहीं पर हथियारों की वर्षा होने लगती है तथा कहीं कहीं गर्म पानी बरस पड़ता है, कभी चार भस्म कीचड़ की वर्षा होती है, कहीं वह पापी बहुत नीचे गर्त में गिर जाता है तो कहीं उसे बहुत ऊंचे स्थान पर चढ़ना पड़ता है और कहीं गुफाओं में प्रवेश करना पड़ता है, गुफाओं में वह महाअंधकार है, बीच में ऐसी ऐसी शिलाएं आती है जिस पर चढ़ना कठिन, पहाड़ आते हैं जिसमें चढ़ना कठिन हो जाता है, और कहीं कहीं पर रुधिर पीप एवं विष्टा में से भरे हुए तालाब आते हैं। इस प्रकार चलते चलते मार्ग के मध्य में अत्यंत दुखदायी जिस हाल में शून्य शरीर कांप उठता है, ऐसी एक नदी जिसका नाम है गरुड़ वैतरणी है, उसे देख देख करके अत्यंत दुख होता है, वह 100 योजन विस्तार वाली है, उस पर उसमें पूर्व रुधिर बहता है, उसके तट पर हड्डियों के ढेर लगे रहते हैं, किनारों पर मांस तथा रुधिर की कीचड़ भरी रहती है, वह बहुत ही गहरी और उस जिससे पापी पार नहीं कर सकते, जिसके मध्य में संभाल आते हैं, भौरे आते हैं, जिसमें पाप आत्मा और भी फंस जाते हैं, इसी प्रकार उनके लिए दुर्गम हो जाता है, बड़े बड़े मगर भरे हुए ऐसे है सैकड़ों घोर पक्षी जिसके चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं, पापी के वहां पहुंचते ही वह और उग्र रूप धारण कर लेते हैं, बड़े बड़े शोले उठते हुए दिखाई देते हैं जिससे हे गरुड़ कड़ाव के भीतर अग्नि में तपे घी के समान ज्वाला युक्त हो जाती है, इसे वैतरणी कहते हैं, या वैतरणी सुई की भांति मुख वाले कीड़ों से खूब भरी हुई है, वर्ज जैसे चोंचों वाले बड़े बड़े गीद यों काक कौवा पक्षियों के से घिरे हुए है, इस नदी में शिशुमार मगर जलों का बड़े बड़े मक्षियों कछुए आदि अनेकों जल जीव मुख खोले फिरा करते हैं, जिससे ज्यों ही पापी जीव पड़ते हैं त्यों ही हाहा कर चिल्ला उठता है, हाय भ्राता, हाय पुत्र, हाय पिता, इस प्रकार दीनता पूर्ण वचन बोलते हैं, साथ ही उसके भूख प्यास भी अत्यंत व्याकुल करती है, बहुत से भाग झाग से रुधिर के साथ रुधिर के पुए से भरे हुए नदी के भीतर रुधिर को भी खून को भी पी जाते हैं, वह नदी अत्यंत विकराल और खूब गर्जना करती रहती है, अत्यंत भयप्रद डरवाने होने के कारण उसको देख पाना भी अत्यंत कठिन है, पापी उसे देखते ही तत्क्षण मूर्छित हो जाते हैं, उसमें भीतर जाते ही बड़े बड़े वृक्षों यों काले सर्प पापियों को चारों ओर से घेर लेते हैं और उन पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं दिखाई देता, उसे नदी के भीतर सैकड़ों हजारों चक्कर लगाते लगाते पापी पाताल में चले जाते हैं, क्षण भर वहां रहकर फिर ऊपर आते हैं, हे गरुड़ ऐसी नदी पापियों के लिए ही निर्मित की गई है। जिस जिसका पार दिखाई नहीं देता वह बहुत दुखदायक है। कुछ पापियों की नाक नात कर रस्सियों द्वारा खींच कर किसी के कानों में रस्सी बांध कर यमदूत ले जाते हैं, तथा काल पाशों के और बड़े बड़े काक पक्षियों कौआ पक्षियों द्वारा खींचा हुआ चल रहा है। कई एक पापी तो ग्रीवा भुजा पांव तथा पृष्ठ भी झंझीरों में बंधे हुए खींचे जा रहे हैं। यों कहीं सिर में पर लोहे का भार उठाए मार्ग पर चल रहे हैं। ममता पुण्य योग न मनुष्य जन्म लभते तत्प्राप्त न कृत्यो धर्म कृदृशम की हिमिया कृतम। भगवान कहते हैं कि इतने दुखी होने पर भी यम मार्ग में हा पुत्र हा पौत्र इत्यादि वचन बोलते हैं। मंद बुद्धि अपने किए पर पश्चाताप भी करता है। कहते हैं कि देखो भारी पुण्य में हमें अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, उसे पाकर व्यर्थ ही खो डाला, कोई धर्म नहीं किया। मायाम न दत्तम न हुतम हुतासने तपो तप्तम त्रिदशाम न पूजिता न तीर्थ सेवा विहिता विदन दो दहीन कवचिन्नस्त से त्वयाम कृतम। मनुष्य शरीर ही मुक्ति का साधन है। ऐसा उत्तम जन्म पाकर ना कुछ दान ना अग्नि में होम ना तप और ना देवताओं की पूजा की विधि यम श्रद्धा पूर्वक किसी तीर्थ पर भी नहीं पहुंचे, ना किसी साधु संत ब्राह्मण की सेवा की, क्योंकि इसलिए हे जीव अब अपने किए कर्मों को भोगो, तुम्हारा निस्तार कैसे हो। अरे मैंने ब्राह्मण देवताओं की कभी पूजा भी नहीं की, ना पतित पावनी श्री गंगा का जल पान किया, ना कभी सत्पुरुषों की सेवा की, ना महात्माओं का सत्संग ही किया, कोई परोपकार भी तो नहीं किया। हे देह अभिमानी तू अपने किए कर्मों का फल भोग। मनुष्यों एवं पशु पक्षियों के लिए जल रहित स्थान पर कोई तालाब अथवा कुआं आदि भी नहीं बनवाया। गौ ब्राह्मणों आजीविका के लिए किंचित मात्र धन भी खर्च नहीं किया। इसलिए हे जीवात्मा अब तू अपने किए कर्मों का फल भोगो। नित्य यथाशक्ति अन्न दान भी नहीं किया और गौ को एक दिन तृप्ति का चारा घास कुछ भी दान नहीं किया। दैनिक कार्य में स्नान ध्यान संध्या जप हवन स्वाध्याय देव पूजन वैश्व बलि आदि भी नहीं किया और ना वेद शास्त्रों के यथार्थ वचनों का पालन किया, ना ही वेद शास्त्रों के बताए गए मार्ग पर चला। कोई भी पुराण शास्त्र नहीं सुना और ना वेद शास्त्र जाने वाले ब्राह्मण की पूजा ही की। इससे हे जीवात्मा अपने किए कर्मों को भोग। ऐसे ताड़ना पापी को यम लोक में मिलता है। स्त्री शरीर आगे हो सोचता है, स्त्री शरीर पाकर मैंने अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया, ना उसे कभी मधुर वचन कहे, पतिव्रता धर्म का पालन भी नहीं किया। यथा योग गुरुजन पति और गुरुओं का उचित सत्कार कभी नहीं किया। इस कारण अब जीव आत्मन अब हम अपने किए कर्मों को भोगो। अपना धर्म समझकर पति की सेवा नहीं की, पति के परलोक सिधारने पर अग्नि प्रेरणा सती भी नहीं हुआ, विद्वापन पाकर तप नहीं किया। इसी कारण हे जीव अब अपने किए कर्मों को भोग। कभी व्रत द्वारा अथवा संपूर्ण रीति से चंद्रायन व्रत किसी भी व्रत द्वारा अपने शरीर को निर्बल नहीं किया। स्त्री का शरीर बहुत दुखों का पात्र होता है और पूर्व जन्म के विकर्मों से ही प्राप्त होता है। पूर्व जन्म के बुरे कर्मों से ही स्त्री जन्म प्राप्त होता, ऐसी स्त्री का शरीर प्राप्त करके अपने सुधार के लिए मैंने कुछ भी कर्म नहीं किया, ऐसा सोचता है पापी आत्मा यमलोक में। इस प्रकार हे गरुड़ जी, भगवान आगे कहते हैं कि वह प्रेत आत्मा पूर्व शरीर द्वारा किए हुए दुष्कर्मों का इसको याद कर पश्चाताप करता है, हाथ मल मल करके कहता है कि मनुष्य का यह शरीर अब मुझे मिलने का नहीं, यूं ही खींचता मलता है। तब सत्रह दिन तक वायु वेग के साथ अकेला यानी कि हवा के रफ्तार से अकेला चलकर प्रेत आत्मा थ्वारे दिने हे गरुड़ सौम्यपुर में पहुंचता है, जिससे बहुत से प्रेत, जहाँ पर बहुत से प्रेत रहते हैं और वहाँ पुष्प भद्रा नदी पुरदर्शन न्योग्रोग वहाँ का राजा है, पूर्ण दर्शन न्योग्रोग वहाँ का राजा है। यहाँ पहुँच करके यमदूत थोड़ा विश्राम करते हैं और वहाँ तथा प्रेत आत्मा अपने स्त्री पुत्र आदि बंधु बांधु का सुख स्मरण कर दुखी होता है। यहाँ संबंधी धन नौकर चाकर आदि का स्मरण करके सब अब जब भी गहरी चिंता में पड़ता था उसे वहाँ वाले यमदूत इकट्ठे होकर के कहते हैं, हे प्रेत, तुझे स्त्री पुत्र धन बांधु मित्र याद आ रहे हैं? कोई भी किसी का नहीं है, अपने कर्म के साथ चलते हैं, उनके स्वयं भोगता हुआ अब यमपुर का मार्ग पूरा करो। अरे प्रेत, यम मार्ग में मृत्यु लोक में यम मार्ग तो मृत्यु लोक में प्रसिद्ध है, बालक से लेकर के वृद्ध सब वृद्ध तक बूढ़े तक जानते हैं, क्यों क्या ब्राह्मणों के से पुराणों की कथा में कभी यम मार्ग की बात नहीं सुनी? ऐसे कहकर यमदूत उस उन्हें मुग्धरों से पीटता है। तब उसको गिरते भागते रोते हुए बलपूर्वक खींचता है। इस पुर में कुछ विश्राम पाकर के प्रेत के बेटे पोते स्नेह से मानसिक पिंड आदि दान करते हैं तो उसे मिलता है। तदंतर सूर्यपुर जाता है, इसके बाद वहां से सूर्यपुर जाता है जिसका काल रूप धारण किए जंगम नाम का राजा है। जो ही जीव उसे देखता है तो वह भय से कांप उठता, डर से कांप उठता, वहां कुछ देर सुस्ताते की इच्छा करता है। उस पुर में पहुंचकर प्रेत के को पौत्र आदि संबंधी जो कुछ त्रैपक्षी पिंडदान करता है उस अन्न संयुक्त जल को वह ग्रहण करता है, फिर वहां से चल पड़ता है। तब वह प्रेत अत्यंत शीघ्र नगेंद्र भवन में पहुंचता है। वहां बड़े बड़े विकट वन है, उन्हें देखकर प्रेत चिल्ला उठता है, अत्यंत दुखी होकर के रोता है। वहां यमदूत उसे बांध कर निर्दयता से खूब खींचता है, वह रोता है, बारंबार चिल्लाता है। इसी प्रकार दो मास बीत जाने पर वह दुखी होकर के उस पुर में प्रवेश करता है जहाँ बांधों द्वारा पिंडदान परिवार द्वारा पिंडदान जल वस्त्र आदि प्राप्त करने के पश्चात यमदूत उसे आगे कर ले जाते हैं, वही उन्हीं पार्षद द्वारा खींच कर आगे ले जाते हैं। तीसरे महीने में गंधर्वपुर पहुंचता है जहां उसे त्रैमासिक पिंड प्राप्त होता है, उसे भोग कर आगे के लिए चलता है। और चौथे महीने शैलगमपुर पहुंचता है, वहां पहुंचकर उसे प्रेत के ऊपर पत्थरों की खूब वर्षा होती है। वहां उसे चतुर्मासिक पिंड प्राप्त होता है जिससे भोग करके कुछ सुखी होता है। तब वह प्रेत पांचवें महीने में कौचरपुर में जाता है, वहां बंधुओं से हाथों दिए हुए मासिक पिंड पांच मासिक पिंड प्राप्त करके भोगता। तत्पश्चात वह क्रूरपुर के लिए चल पड़ता है। तब उस प्रेत के 5.5 मास से कुछ कम सानमसिक होता है, जिससे 6 मासी कहा जाता है। उस 6 मासी में बांधों द्वारा दान किए घट सहित पिंड प्राप्त हो पाकर के वह प्रेत कुछ तृप्त होता है। 6 मासी के दिन घट दान के से प्रेत को आधा मुहूर्त यानी कि 1 घड़ी विश्राम मिलता है। उसे पाकर के फिर यमदूत द्वारा चलने के लिए बाध्य होता है, तो सताया जाता है। वह कांपता हुआ अत्यंत दुखी होकर के वहां से चल देता है। फिर चित्र भवनपुर में यमराज के छोटे भाई विचित्र नाम के राजा राज करते हैं। वे बड़े शरीर वाले और उन्हें देखते ही डर कर भागने लग जाता है। तब उसके सामने नदी पार पहुंचाने वाले मल्लाय आकर के कहते हैं, हे प्रेत, यह वैतरणी नदी है, अर्थात वितरण करना वेदादि शास्त्र वेता मुनियों के कथा अनुसार दान करना, जिसके प्रभाव से यह वैतरणी नदी पार की जा सकती है, इसी से इसका नाम वैतरणी है। हम तुम्हें इसके पार पहुंचा देने को नाव लाए हैं। यदि तुमने कुछ दान किया हो तो इस नाव के द्वारा हम तुम्हें उस पार पहुंचा देंगे, परंतु या समझ लो या नाव उसी को पार लगाती है जिसे गौदान किया हो। गौदान किए बिना या किसी को पार किसी के पास जाती ही नहीं, इसे सत्य समझो। मल्लाओं की बात सुनकर प्रेत गौदान ना करने के कारण रो उठता है और कहता कि हाँ देव, पुकारने लगता है। उस समय प्रेत को देख करके नदी आग पर चढ़ाए गए तेल की भांति उबलने लग जाता है। प्रेत उस नदी को देख करके चिल्ला उठता है, उस पाप आत्मा ने मनुष्य जन्म पाकर के कुछ दान नहीं किया, इसलिए उस वैतरणी में डूब जाता है। तब यमदूत आकाशवाणी हो आकाशचारी होकर के मछलियां फंसाने वाले मछुए की भांति प्रेत के मुंह में कांटा छुपा करके मछलियों की भांति उसे खींचकर किनारे पर फेंकते हैं। वहां उसे 6 मासिक पिंड प्राप्त होता है, उसे भक्षण कर आगे बढ़ता है। 6 मासिक पिंड उसके तृप्ति नहीं कर सकता, अतः भूख प्यास से व्याकुल हो मार्ग में रोता चिल्लाता जाता है। वहां से वह 7वें माह के लगने पर वहां पदपुर पहुंचता है। वहां पुत्र पौत्र आदि का दिया 7वें महीने का पिंड दान भोगता है। वहां से चल करके दुखदपुर में जाता है। वहां पक्षियों की भांति आकाश मार्ग चलता हुआ बहुत दुख उठाता है। तो आज हम यहीं ठहरते हैं, अगले सप्ताह आगे सुनाएंगे।
Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada.
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यष्टौ दर्शत श्री श्री वेद गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा
हिरण्यकशि पूर्वक्ष पीला टंगा न खाला ये तो न सिंगा पर तो न सिंगा यतो यतो यामी ततो